नमस्कार साथियों, मैं सुरभि यादव और आप सुन रहे हैं छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी। आज गुरुवे जी की डायरी के कार्यक्रम के तहत श्रद्धा, अंधश्रद्धा और संविधान के तहत आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जुड़ी है आराधना भार्गव जी। मैम, आपका मोबाइल वाणी पर बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद
मैम। जैसे कि गुरुवे जी की डायरी में अंधश्रद्धा और संविधान को लेकर बात की गई है, उसी से मैं आपसे प्रश्न करना चाहूंगी। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हमारे देश को आजाद हुए आज 70 साल हो गए हैं, संविधान पारित किए हुए भी आज 70 साल हो गए। हमारे देश में हर तरह के कानून के साथ अंधश्रद्धा के खिलाफ अनुच्छेद 51 में कई तरह के कानून दिए गए हैं, लेकिन जिन पर ये जिम्मेदारियां हैं कि वो इन कानूनों का संचालन करें, वो अपनी जिम्मेदारियों से भागते नजर आते हैं। जिन राज्य सरकारों पर ये जिम्मेदारियां हैं कि वो इन कानूनों का संचालन सही तरह कैसे करें, अपनी राज्य प्रजा में सही तरह इन शक्तियों से पालन कराया जाए, वो ऐसा नहीं करती। उल्टा वो इनका दुरुपयोग कर, भ्रमों का उपयोग कर, केवल और केवल जनता से मत पाने का एक जरिया बनाया हुआ है। तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है कि ये कानूनों का सही तरह कैसे पालन किया जाता है, या फिर बस संविधान की किताब पर ये कानून लिख के छोड़ दिए गए हैं?
भारत के संविधान को लागू करना सरकार की जवाबदेही है
जी,
क्योंकि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो सरकार ने हमें 2 कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दी। सरकार हमारी और हमारी संपत्ति की सुरक्षा करेगी, पर हम ये देख रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी हमको सरकार ने दी थी उसका कहीं पर भी कोई पालन नहीं किया जा रहा है, बल्कि सरकार की मंशा इस संविधान को बदलने की है और मनुवादी व्यवस्था से ये देश चले, यह प्रयास इस सरकार का है। सरकार ने अभी जब संसद भवन का उद्घाटन हुआ था तो जो सांसदों को संविधान की पुस्तक बांटी, उस पुस्तक में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को हटाया गया
जी।
तो ये जो धर्मनिरपेक्ष है, इस शब्द को ही सरकार हटाना चाहती है, तो फिर ऐसी परिस्थिति में संविधान को लागू कराने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, हम भारत के लोगों की है। भारत के संविधान की उद्देशिका में उल्लेख किया है, हम भारत के लोग भारत को धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। यानी हमारी जवाबदेही बनती है कि हम भारत के संविधान को लागू कराएं, पर देश की जनता के पास भारत का संविधान नहीं है। लगभग लोगों के पास रामायण है, गीता है, बाइबल है, कुरान है, धार्मिक ग्रंथ है, पर भारत का संविधान लोगों के घरों में नहीं है। जिस तरीके से गीता प्रेस 1 रुपए में गीता प्रेस कराकर लोगों को बांटती है, उसी तरह अगर भारत की सरकार लोगों को भारत का संविधान लोगों तक पहुंचाती सरल भाषा में तो लोग भारत के संविधान को समझ पाते, तब सरकार पर दबाव बनाने का काम करते, पर सरकार ये नहीं चाहती कि लोग भारत के संविधान को समझे, वह अंधविश्वास में लगे रहे हैं। और इसलिए हम देखते हैं कि दोनों पार्टी के लोग वो जो अंधविश्वास फैलाते हैं उन नेताओं को बुलाते हैं। जैसे वो प्रदीप मिश्रा एक आए, उन्होंने कहा कि बेलपत्ती के ऊपर अगर शहद से कोई लिखकर या शहद लगाकर शंकर भगवान की पिंडी पर चढ़ाएगा तो वह बच्चा परीक्षा में पास हो जाएगा, पर किसी ने भी कोई एक्शन नहीं लिया इस देश में। क्या इस तरह से अंधविश्वास क्यों फैलाते हो?
जी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब इन्होंने इस तरह की बातें रखी और जब लोगों ने हमसे पूछा कि आपको कैसे पे यकीन है, कुछ लोगों ने इसके समर्थन में थे, कुछ लोग इसके अंधविश्वास में थे, समर्थन कर दिया, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि इनके खिलाफ अगर कार्रवाई करेगी तो वो देश की राजनीति करेगी, देश का कानून व्यवस्था करेगा, लोग अपनी जिम्मेदारियां समझते ही नहीं है।
हाँ, जबकि मैंने बताया कि ये हमारी जवाबदेही, सरकार कैसे चले, सरकार का चयन कैसे हो, न्यायपालिका किस तरह से काम करे, ये सब भारत की जनता का है, क्योंकि हमने ही तो ये हमने ही तो भारत के संविधान को अंगीकृत किया है, हमने ही तो इसे स्वीकारा है, हमने ही तो इसे बनाया है, तो हमारी सबकी जवाबदेही बनती है कि हम भारत के संविधान का पालन कराएं और भारत के संविधान से ही देश चले। और जैसे मोबाइल वाणी इस तरह की जागृति फैलाने का काम कर रही है, मैं मोबाइल वाणी को इसके लिए धन्यवाद दूंगी। हम भी कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकारों को लेकर प्रशिक्षण शिविर करते रहते हैं, और जो मोबाइल वाणी में साथी सुन रहे होंगे, और अगर उन्हें लगता है कि भारत के संविधान के बारे में उन्हें सरल भाषा में प्रशिक्षण चाहिए, तो हम निशुल्क प्रशिक्षण देने का काम भी करते हैं।
जी मैम, जैसे कि आपने अभी बात कही थी पंडित मिश्रा ने जो बेलपात्री के जरिए बच्चों को पास कराने का एक भ्रम फैलाया था, लेकिन इस पर जो उनका जो कार्यक्रम जो पंडाल किया गया था, वो जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो बढ़ चढ़कर उनको खुद आह्वान करती है, ऐसे ऐसे बाबाओं को खुद वो बुलाती है, उनका पंडाल लगाती है और फिर लोगों को कहती है कि आइए इनका प्रवचन सुनिए। तो ऐसे में क्या एक राजनीतिक भूमिका नहीं बनती लोगों में जागरूकता फैलाने की? क्या
ये आपराधिक कृत्य है? इस तरीके के कृत्य करने वालों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, क्योंकि उन नेताओं के अंदर अपने कामों को लेकर वोट प्राप्त करने की क्षमता नहीं है, क्योंकि उन्होंने जनता के लिए कोई काम ही नहीं किया है और उनकी आवाज पर जनता इकट्ठा नहीं होती। यह लोकतंत्र के लिए बहुत नुकसानदायक है और यह लोकतंत्र को इससे भारी नुकसान पहुंचेगा, और नेता लोग ही ऐसे अपराधियों का सहारा लेते हैं। राम रहीम क्या अपराध सिद्ध हो चुका है? वो जेल के अंदर है, पर उसको जब लोगों को वोट चाहिए होते हैं तो राम रहीम को वो पैरोल पर छुड़वाते हैं, उसके चरणों में नेता और मंत्री झुकते हैं, तो ये इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता।
जी, और मैं एक बात ये भी जानना चाहूंगी कि आपने कहा और हमारा संविधान जो है वो बहुत कठोर लचीला है, इसमें कठोर कानून भी दिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों में इसका डर नहीं है, खास तौर पे अंधश्रद्धा के जो खिलाफ कानून बने हैं उसको लेकर कुछ बाबाओं में डर नहीं है, वो लगातार इन कानूनों का उल्लंघन करते हैं और ऐसे में उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, कोई कुछ नहीं कहता, ऐसा क्यों?
ऐसा इसलिए है कि ये जो केंद्र में बैठी है सरकार, ये हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प इन्होंने लिया है, और जो बाबा इस तरह की बात करता है उसको तो ये राज्य मंत्री का दर्जा देते हैं। आप चाहे प्रदीप मिश्रा की बात करें या वो छतरपुर वाला कौन धीरेंद्र शास्त्री है,
पंडित धीरेंद्र,
जिसने महिलाओं को बोला कि ये खाली प्लॉट है और जो चाहे वो रजिस्ट्री करा ले, तो ऐसे लोगों को बुलाने का काम करते हैं, तो फिर इससे अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं, अपराधियों को लगता है कि नहीं ये लोग तो हमारे को सपोर्ट करने वाले हैं। तो ये है सिर्फ ये जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है उसको समाप्त करना चाहती है सरकार और हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, और हिंदू राष्ट्र जब बनने की बात होगी तो इसी तरीके से क्या बोलना चाहिए, अंधविश्वास इस प्रदेश में बढ़ेगा और महिलाओं का शारीरिक शोषण भी इसी तरीके के बाबाओं द्वारा किया जाएगा।
जी मैम, अंत में आपसे यही जानना चाहूंगी कि अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश के चुनावी नतीजे आने के हैं, कुछ दिनों में यह भी तय हो जाएगा कि आखिर प्रदेश की डोर किसके हाथों में जाएगी। मैं यही जानूंगी कि जब सरकार बनेगी, जब नतीजे आएंगे, तो आपको उन सरकारों से क्या उम्मीद है कि क्या वो इन तरह के कानूनों को सही तरीके से पालन करेंगी, जनता में अंधश्रद्धा के खिलाफ आवाज उठाने का काम करेंगी, एक वैज्ञानिक जो दृष्टि है वो प्रदान करने का प्रयास करेंगी, इस पे आपसे क्या उम्मीद है आने वाली सरकारों से आपको?
मुझे कोई भी उम्मीद नहीं है उन सरकारों से, क्योंकि कानून तो संसद में और विधानसभा में बनते हैं, हमारे नेताओं को कानून बनाना तो दूर, कानून पढ़ना भी नहीं आता, हम ऐसे लोगों को चुन कर भेज रहे हैं। कानून बनाने का काम ब्यूरोक्रेसी द्वारा किया जा रहा है, तो वो जो लोग एसी कमरे के अंदर बैठे हैं, वो देश में ऐसे कोई कानून नहीं बना सकते जो जनता के हित से जुड़े हुए हैं। तो ये दुखद बात है कि चुने हुए प्रतिनिधियों का इंटरेस्ट है कि ट्रांसफर किसका कराना है और किसका ट्रांसफर रोकना है, और कानून बनाने के लिए तो वो जो हमारे अधिकारी हैं वो कानून बनाने का काम करते हैं। क्योंकि वो जनता के बीच में नहीं रहते, इसलिए जनता के पक्ष के कोई कानून बनेंगे ऐसी आशा और उम्मीद मुझे बिल्कुल भी नहीं है।
जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने इतना कीमती वक्त निकाल के हमारे साथ आपने अपने विचार साझा किए, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके माध्यम से हमारे श्रोताओं को नई जानकारी और एक नया विचार उनको सोचने के लिए मजबूर किया होगा कि आखिरकार अंधश्रद्धा कब खत्म होगा। इसी के साथ धन्यवाद श्रोताओं, अब मिलेंगे अगली खबर के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए मोबाइल वाणी के साथ।